आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और आज हम आपकी इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है द एड्रेस और इसको लिखा है मार्गा मिनको ने। सो एक्चुअली मार्गा मिनको जो है वो एक स्यूडो नेम था, मतलब एक पेन नेम था सारा मेनको के लिए, और वो जो है वो एक ज्यूइश ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करती है। सो जब हिटलर का रेजीम था, एंड आप सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि किस तरह से ज्यूइश लोगों को उसने होलोकॉस्ट करा था और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला था, तो ये उस वक्त की सर्वाइवर हैं। इनके जो पेरेंट्स थे और इनके जो सिबलिंग्स थे, यानी भाई बहन जो थे, इन लोगों को हिटलर के द्वारा अरेस्ट करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था, लेकिन किसी तरह मार्गा जो है वो अपने आप को बचा के, अपनी जान बचा करके उस टाइम तक हाइडिंग में रही, और इसी वजह से उनके जो भी काम है, उनकी जो भी बुक स्टोरीज हैं, उनमें एटलीस्ट कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो होलोकॉस्ट या हिटलर या वॉर से रिलेटेड होता ही है। सो इस कहानी में भी एक लेडी होती है जो कि आफ्टर वॉर वो एक घर पर जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स कलेक्ट करने, और ये एड्रेस भी उसकी मदर ने वॉर स्टार्ट होने से पहले ही उसको दिया था। सो लेट्स सी कि ये स्टोरी में क्या है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। नो, आई डोंट नो यू। I am Mrs. S. daughter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. Well, you knew my mother? I asked. Have you come back? I thought that no one had come back. Only me. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. I regret I cannot do anything for you. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you. Another time. So, यहाँ पे हमारी जो स्टोरी जब स्टार्ट होती है, तो जो नरेटर होती है वो एक घर पे आ रही होती है और उसने घंटी बजाई और वो पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुमने मुझे पहचाना। और वो जो जिसका घर था, जिसने घर खोला, वो ओल्ड लेडी जो है इसको पहचानने से इनकार कर देती है। इनफैक्ट वो कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, और वो इतनी ज़्यादा, मतलब वो पूरी तरह से दरवाज़ा खोल के सामने भी नहीं आ रही थी, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और वहीं से वो बात कर रही थी। तो अब क्या होता है कि नरेटर को लगता है कि ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही है, तो हो सकता है मैं ही गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, या मैंने ही किसी गलत घर की घंटी बजा दी है। लेकिन जब वो थोड़ा और सामने आती है, वो औरत जब और सामने आती है, तब नरेटर देखती है कि उसने जो है उसी के मदर का कार्डिगन पहना हुआ है। कार्डिगन जो होता है ना, वो एक स्वेटर होता है। सो उसने देखा कि वो सेम ग्रीन कार्डिगन उसकी मदर का ही है, और उस पर जो वुडन बटन्स लगे हैं वो इतनी बार, क्योंकि वो कार्डिगन जो है वो इतनी बार धुल चुका है, इस वजह से वो पेल हो चुके हैं, मतलब उस वो डिसकलर हो चुके हैं। सो जैसे ही वो लेडी ने देखा कि नरेटर उसको देख रही है, उसको पहचानने की कोशिश कर रही है, तो उसने वापस वो जो है दरवाजे के पीछे छुप जाती है। सो वो कहती है, नरेटर और वो दोनों बात करते हैं, एंड द लेडी सेज कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अभी हम लोग बात कर सकें। और नरेटर उसको इंसिस्ट करती है कि सुनो, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैंने ट्रेन ली है, इतनी जर्नी करा है सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। तभी वो कहती है कि मुझे लगा कि कोई वापस नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि वो लेडी जो है वो उसको पहचान गई, नरेटर को पहचान गई, एंड इनफैक्ट वो कह रही है कि मुझे लगा कि कोई वापस नहीं आया है। तब नरेटर क्या बोलती है कि सिर्फ मैं वापस आई हूँ, बाकी सब मर गए। सो वो कहती है कि अभी हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि कभी और हम लोग बात कर पाए। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस कुड बी डिस्टर्ब्ड। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। समवन स्टेड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letters on white enamel. And on the jamb, a bit higher, the number 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. So now what the narrator does, कि वो वापस से एक बार फिर से sure होना चाह रही थी जाते जाते कि कहीं वो गलत घर में तो नहीं आई। जब उसने check करा तो उसके जो name plate थी उस पर लिखा हुआ था क्या, डॉर्लिंग, और वो उस पर नंबर क्या था, नंबर 46। सो इसका मतलब ये हुआ कि उसको वो बिल्कुल सही एड्रेस पे आई थी। और उसी वक्त जो है उसने देखा कि जो विंडो थी उसका कर्टन हटता है और वहां से किसी ने उसको देखा, किसी ने झांका, और जैसे कि उसने वापस पूछा हो कि कौन था, क्या चाहिए था, तो जो लेडी थी उसने रिप्लाई करा हो कि कुछ नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। और तब जो है वो प्री वॉर जो नरेटर है वो अपना और अपनी मदर की एक कॉन्वर्जेशन को याद करती है, जब उसकी मदर बता रही होती है कि ये जो है वो मिस्टर डॉर्लिंग है, और वो उसकी मदर ने उसको बताया कि काफी पुरानी कोई इसकी अक्वेंटेंस यानी जानने वाली है और ये आई है हमारे हेल्प करने के लिए। सो नरेटर जो है वो अपने घर में, वो शायद बाहर रहती थी जैसे कि हमें स्टोरी में हिंट दिया जा रहा है, तो जब घर पे आई थी कुछ दिनों के लिए, तब जो है उसने बहुत सारी चीजें घर से मिसिंग देखी, गायब देखी, तो उसे शक होता गया कि ये क्या, मतलब बहुत सारी चीजें उसके घर में उसको नहीं मिल रही थी। तब वो कहती है कि उसकी मदर जो है शी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि उसने इतनी जल्दी कैसे ये सारे चेंजेस नोटिस कर लिए। और उसके बाद उसने, उसकी मदर ने उसको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माय मदर। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर। शी हैड ट्रबल लजिंग दोज लार्ज वेसेस and I'm worried she got a creak in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She ever even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she's running. Each time she goes out our door with a full suitcase or bag. So, अब क्या है कि उसकी मदर ने बताया कि हर टाइम जब मिसेस डॉर्लिंग यहाँ पे आती हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ वो लेकर के जाती हैं. सो ये क्या है, वो एक्चुअली देखो वो उस टाइम पे क्योंकि उन लोगों को पता था कि अब वहां की सिचुएशन खराब हो चुकी है एंड आज नहीं तो कल उन लोगों को ऑफिशियल लेटर या पुलिस वाले आएंगे अरेस्ट करने के लिए और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालने के लिए. सो उसकी मदर ने सोचा कि वो ये सारे सामान जो है वो किसी ऐसे इंसान को दें जो कि आफ्टर वॉर जब ये सारे वॉर खत्म हो जाएंगे तो उनको वो सारे जो उनके सामान है वो उनको वापस मिल सके. एंड मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो वही थी कि वो उनके घर से अपने जो भी वो सामान थे जो कि नरेटर को बिलोंग और नरेटर की मदर और उसकी फैमिली को बिलोंग करते थे वो एक ही एक करके वो सारे सामान उसके घर से शिफ्ट करके अपने घर पे लेके जा रही थी. सो उसने इनफैक्ट बोला भी कि आपको लगता है कि ये सारे सामान जो है वो मिसेस डॉर्लिंग को ले जाने चाहिए. तो कहती है उसकी मदर बोलती है कि उनसे ये बात करनी भी जो है वो काफी उनकी इंसल्ट करनी होगी और मिसेस डॉर्लिंग जो है वो काफी रिस्क उठा रही है कि वो हमारे दरवाजे से जब भी जाती हैं तो वो भी एक भरे हुए सूटकेस के साथ. सो इसका मतलब क्या था कि वो हो सकता है कि वो ज्यूइश ना हो मिसेस डॉर्लिंग और इस वजह से किसी का भी उस टाइम पे एक ज्यू फैमिली के साथ कनेक्शन रखना ही वो काफी खतरनाक होता हो. सो इस वजह से वो धीरे धीरे करके सारे सामान जो है वो शिफ्ट करके अपने घर पे लेके जा रही थी. एंड उसकी जो नरेटर की मदर थी वो इन सारे चीजों के लिए मतलब मिसेस डॉर्लिंग को काफी हेल्पफुल समझा कर रही थी. माय मदर सीम टू नोटिस दैट आई वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. शी टुक एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. आई वाज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. So now what happens? कि उसकी मदर ने पहले ही उसे मना कर रखा था कि सुनो तुम ये सारी happenings के बारे में मुझसे ज्यादा question मत करना. So भले ही उसकी मदर को ये बात दिखी कि उसके ये बताने पे कि वो हमारे लिए risk उठा रही है वो ज्यादा convinced नहीं दिख रही थी, फिर भी उन लोगों ने इस topic पे ज्यादा बात नहीं करी. एंड अब मतलब ये एक तरह से आप समझ लो कि कुछ पार्ट स्टोरी का फ्लैशबैक में चलता है और कुछ पार्ट प्रेजेंट में. सो अब अगेन कमिंग टू द प्रेजेंट, जो नरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर से वापस जा रही होती है और वो मतलब बिल्कुल अपने स्ट्रीट को ही देखते हुए जा रही होती है, मतलब जिस जहाँ पे वो देख रही है कि कहीं इधर उधर नहीं देखती है. क्यों? क्योंकि शी इज अफ्रेड के उसको वो सारी जो फेमिलियर प्लेसेस हैं जो जब वो यहाँ रहा करती थी और वही शॉप्स और वही रेस्टोरेंट और वही बिल्डिंग्स जब उसको दिखेंगी तब उसको अपने सारे घर वालों की याद आएगी और जहाँ पे वो नॉर्मली जिस तरह से वो रहती थी वो याद आएगा एंड देन शी विल स्टार्ट मिसिंग अपने घर वालों को. सो अगेन उसने फिर से ट्रेन ली और अपने घर वापस जाना स्टार्ट कर लिया. और फिर जो है वो फिर से ये स्टोरी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है थोड़ा सा और फिर जो है वो याद करती कि फर्स्ट टाइम वो मिसेस डॉर्लिंग से मिली कैसे थी. सो एक दिन सुबह जब ये उठी तब इसको जो है थोड़ी आवाजें आई और ये जब नीचे आई जो नरेटर है तब उसने देखा कि देयर वाज अ वुमन जिसके ब्रॉड बैक थे, मतलब ब्रॉड बैक इन द सेंस कि क्या वो शो कर रहा है कि वो थोड़ा हेल्दी थी, वो औरत जो थी वो थोड़ा हेल्दी थी. देयर इज माय डॉटर, सेड माय मदर, शी बेकन्ड टू मी. द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हेवी केस. इन मार्कोनी स्ट्रीट, said my mother. Number 46, remember that. I had remember it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. And naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. But gradually, everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day, I noticed I was curious about the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch them, remember. So, यहाँ पे क्या होता है? कि जब उस लेडी को वो देखती है तो वो देखती है कि वो फिर से उसके घर से एक सूटकेस जो है वो लेकर के जा रही होती है और वो सूटकेस जो है काफी हैवी होता है. एंड देन नरेटर अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो बहुत दूर रहती है हमारे घर से, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपना सामान ले जाने से. तब उसकी मदर बताती है कि वो लेडी जो है वो मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 पे रहती है एंड उस चीज को वो याद रखे, ये एड्रेस को वो याद रखे. एंड ये एड्रेस जो है वो नरेटर के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस गया. लेकिन नरेटर ये बोलती है कि जब उसको ये बात याद आई तब जो है वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो उसके सामान कहाँ है, उसके जो मदर के पोजेशंस थे, जो बिलोंगिंग्स थी वो कहाँ है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो डरी हुई थी. डरी हुई किस वजह से थी? क्योंकि जब वो उस उन चीज़ों को वो देखेगी, वो फिर से उन चीज़ों को टच करेगी तो नरेटर को अपनी फैमिली की याद आएगी जो कि अब जिंदा नहीं है, और हो सकता है कि वो सारी मेमोरीज, वो सारे दिन उसको वापस याद आ जाए जो कि वो याद नहीं करना चाहती है, कि वो किस तरह से ज्यूइश कंसंट्रेशन कैंप में वो लोग किस तरह से रहे, ये किस तरह से हाइडिंग में रही या जो भी था. सो अब जो है क्या हुआ कि जैसे ही जो आफ्टर लिबरेशन, लिबरेशन आप लोगों ने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कि किस तरह से नाजीज ने किस तरह से ऑक्यूपाई करा और पोलैंड वगैरह को, होलैंड को किस तरह से वो सारे वहाँ के ज्यूइश को कंसंट्रेशन कैंप में डाला. तो वही टाइम पे आप लोगों ने ये लिबरेशन का वर्ड भी सुना होगा. सो लिबरेशन की अगर हम लोग बात करें देन लिबरेशन इज कि जब आफ्टर वॉर, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई तब जितने भी लोग थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन सबको जो है अपने अपने घर भेज दिया गया, जो भी लोग बचे थे. सो वो उसी लिबरेशन की बात कर रही है कि लिबरेशन के बाद सारी चीज़ें जब नॉर्मल हुई, जो ब्रेड थी वो लाइटर कलर की होने लगी. इसका क्या मतलब है कि मतलब अब जो है वो खाना जो है वो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होने लगा, बल्कि थोड़ा नॉर्मल जैसे लोग खाते हैं. वो एक रूम यानी उसका घर जहाँ पे वो अनथ्रेटन्ड रह सकती है. अनथ्रेटन्ड मतलब बिना डर के अब उसको वापस कोई अरेस्ट नहीं करेगा या वापस जो है उनमें से किसी को मार नहीं दिया जाएगा. सो जब बेसिकली जब ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल आई तब उसको उसकी उसके सामान की भी याद आई कि वो किस तरह से जो है उसके सामान को उसकी मदर ने जो है वो उस एड्रेस वाली लेडी को दिया था. तभी जो है वो उस सामान को उस एड्रेस पे ढूंढने के लिए या शायद वापस लेने के लिए वो चली जाती है मिसेस डॉर्लिंग के घर पे. तो वो उस सामान को टच करके, फील करके वो वापस से वही अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने पास लाना चाहती है या उसी लाइफ को थोड़ा सा रिलिव करना चाहती है जिस लाइफ से वो लोग बिल्कुल ही डिटैच हो चुके थे और उसके बाकी मेंबर्स फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अब अलाइव हैं भी नहीं। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Now a girl about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, my mother's doing an errand. No matter, I'll wait for her, said the narrator. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. So, इस बार जो है वो वापस जो नरेटर होती है वो वापस जाती है कि ठीक है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो फेल हुआ लेकिन वो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फिर से डॉर्लिंग के घर पे जाती है कि वो अपनी चीजें वापस ला सके। तो इस बार क्या होता है कि इस बार जो है वो मिसेस डॉर्लिंग दरवाजा नहीं खोलती है बल्कि एक 11-12 साल की एक लड़की दरवाजा खोलती है और पता चलता है कि वो उसकी बेटी है। सो वो पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर अंदर हैं? तो वहां वो कहती है कि मदर जो है वो अपना डेली का काम करने वो गई हुई है और तो नरेटर बोलती है ठीक है आई विल वेट। और उसके बाद जो बेटी होती है वो उसको घर के अंदर बुलाती है एंड तभी जो है वो नरेटर एक ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर जो है वो नोटिस करती है। हनुका जो है वो एक्चुअली एक जूश फेस्टिवल होता है जिस तरह से हमारे यहाँ पे दिवाली होती है या क्रिसमस होता है तो आप समझ लो कि वो क्रिसमस और दिवाली का एक मिक्सचर होता है जो कि जूश फेस्टिवल होता है। इट इज अ जूश फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो वो जो पर्टिकुलर वो जो कैंडल होल्डर है वो हनुका में ही यूज किया जाता है और वो जो है वो एक आईने के पास ये टंगा हुआ था। और तभी जो है वो नरेटर वो याद करती है कि हम लोग जो है ये कैंडल इस वजह से नहीं यूज करते थे बिकॉज वो काफी ज्यादा थोड़ा कम्बरसम था मतलब काफी ज्यादा मैसी हो जाता था। एक सिंगल कैंडल स्टिक ही उनके लिए अच्छी होती थी। वोंट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। आई वॉज इन अ रूम I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in a strange atmosphere. Or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture, or the muggy smell that hung there, I don't know. But I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down. And stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge, there should be a burn mark that had never been repaired. My mother will be back soon, said the girl. I've already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from the white pot. All it had was a gold border on the lid, I remembered. She opened a box and took some spoons out. So, अब क्या होता है कि वो जो बेटी होती है मिसेस डॉर्लिंग की वो उसको बोलती है कि आओ बैठो एंड तभी जो है वो जो राइटर की जो सिचुएशन वो कुछ इस तरह से है कि वो जिस रूम में अभी बैठी है वो अपने चारों तरफ जब देख रही है तो उसको सारी फेमिलियर चीजें दिख रही हैं यानी उसकी और उसकी मदर की वो सारी चीजें जो उसके खुद के घर में होती थी वो सारी वो चीजें दिख रही हैं लेकिन फिर भी वो जो है वो उस जगह पे रह करके उसको ऐसा लगता है कि वो इस जगह को जानती है और नहीं भी जानती है। जानती कैसे है कि उसी की सारी चीजें उसको दिख रही है एक ऐसी जगह पे जो उसकी नहीं है यानी वो घर तो उसका नहीं था लेकिन उस घर की चीजें जो थी वो उसकी और उसकी मदर को जरूर बिलोंग करती थी। और उसके बाद जो है वो हर चीज को देख रही होती है इनफैक्ट वो जिस भी चीज पर उसकी नजर पड़ जाती है उसको सारी चीजें याद आने लगती है लेकिन फिर भी अपने तरफ से वो उठा अपनी आंख उठा करके हर चीज को नहीं देखना चाहती है बिकॉज क्योंकि वो जितनी भी ओल्ड मेमोरीज है वो सारी उसको याद आने लगेगी। एंड तभी जो है उसकी बेटी उसको नरेटर को टी ऑफर करती है और वो फिर जिस टेबल पे बैठी होती है उस टेबल के टेबल क्लॉथ को वो रब करने लगती है और तभी उसको याद आता है कि इसी टेबल क्लॉथ पे एक जले का निशान था जो बियॉन्ड रिपेयर था, वो कभी रिपेयर नहीं हो सका। और मतलब वो जो जो एक्टिविटी जो जो चीजें वो देख रही है वो सब जो है उसको कहाँ से लिंक कर रही है, उसके पुराने लाइफ से लिंक कर रही है। तो जब जो डॉर्लिंग की जो बेटी होती है जिस टी पॉट से वो जो है चाय ढाल रही होती है वो टी पॉट भी उसका होता है और उस चीज को भी वो याद कर रही होती है, उस चीज को भी वो पहचान जाती है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, शी लाफ्ड। माई मदर सेज इट इज एंटीक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. We used it for everything. Once, we even ate of the plates hanging there on the wall. I wanted to do so much, but it did, but it wasn't anything special, she said. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing, because it has to be repaired or because you have lent it, for example. So, अभी क्या होता है कि वो कुछ spoons जो हैं, वो कुछ silver spoons एक box से निकाल के देती है उसकी चाय में डालने के लिए। And exactly वो स्पून और वो स्पून का जो बॉक्स था वो किसको बिलोंग करता था, वो खुद नरेटर को ही बिलोंग करता था। सो वो नरेटर जो है एक तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए उसकी बेटी से कहती है कि ये कितना अच्छा बॉक्स है। तब उसकी बेटी बताती है कि हाँ मेरी मदर बताती है कि ये सारे एंटीक हैं एंड इनफैक्ट ऐसे बहुत तरह के हमारे घर में ऑलरेडी हैं। और वो अक्रॉस द रूम अपना फिंगर जो है वो पॉइंट करती है ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे घर पे और भी ऐसी एंटिक चीजें हैं। लेकिन जो नरेटर है वो नहीं देखती है, क्यों? क्योंकि उसको एग्जैक्टली मालूम था कि वो और किस चीजों की बात कर रही है, बिकॉज वो सारी चीजें उसी की तो थी। सो अब जो है वो फाइनली वो जो टेबल क्लॉथ पे वो जले का निशान ढूंढ रही थी वो उसको मिल जाता है एंड फिर वो उसको ट्रेस करने लगती है अपने फिंगर्स से। और उसकी जो डॉटर होती है वो उसको थोड़ा क्वेश्चनिंगली देख रही होती है कि ये क्या कर रही है, ये ऐसे क्यों कर रही है। एंड देन फिर वो एक वक्त की बात बताती है कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है एंड इनफैक्ट ये जो एंटीक प्लेट्स जो हमारे दीवार पे लगी हुई हैं उसका प्रिंट मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा लुभाता है और मैंने कितनी बार जो है वो चाहा है उसमें खाना भी, और इनफैक्ट हम लोग ने इसको हर तरह से इस प्लेट्स को यूज करा है। तब नरेटर बोलती है कि जब आप अपने ही घर पे रहते हो आपको अपने चीजों की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी होती है कि आप उस पर कुछ खास अटेंशन नहीं देते, लेकिन आपको उन सारी चीजों की याद तब आती है जब आपने वो चीजें खो दी हो या नहीं तो किसी को आपने उधार दे दी हो। तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी ही बात जो है वो एक तरह से बताने की कोशिश कर रही है कि जब मैं उन चीजों के साथ उस घर में रहा करती थी तब उसको उन चीजों की ऑफकोर्स नहीं पड़ी थी, लेकिन अब क्योंकि अब वो सारी चीजें एक मेमोरी बन चुकी है तो अब वो उन चीजों को याद भी करती है और उनके सेंटिमेंटल वैल्यूज भी उसको पता चलते हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेम्बर माई मदर वंस अगेन आस्क्ड मी If I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill as she had never asked me before. I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course. And that was the strange thing, I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. The girl laughed again. I bet you don't know it, it is either. I looked intently at her. What we eat with? Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I look, it is in here. So, jo narrator hoti hai, wo uski beti ko phir se ek story batane lagti hai apne time ka. तो वो ये कहती है कि जब तक हम लोग उस चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम लोग उन पे सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं. ये तो आप लोगों को मैंने पिछले पैराग्राफ में बताया ही था. तो अब जो है वो एक बार की ये स्टोरी बताती है कि मैं उस टाइम पे, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है कि क्या मैं उस टाइम पे बीमार थी या किसी वजह से घर पे थी, व्हाटएवर. लेकिन एक बार की बात है जब मेरी मदर ने कहा कि आओ इन सिल्वर्स को क्लीन करते हैं. एंड तभी जो है वो राइटर जो है नरेटर वो पजल्ड हो जाती है कि ये मदर जो है उसकी वो कौन से सिल्वर की बात करती है. एंड तब उसकी मदर कहती है कि ऑफकोर्स जिस कटलरी से हम लोग रोज यूज करते हैं, उसे खाना खाते हैं, उसकी बात कर रही है. तब उस दिन जाकर के उसको पता चलता है कि जिस कटलरी से वो लोग खाना खाते थे, जिन फोक नाइफ और स्पून से वो लोग खाना खाते थे, यूज करते थे, वो एक्चुअली नॉर्मल स्टील नहीं बल्कि सिल्वर थे. और वो उसकी बेटी को भी ये कहते हुए कहती है कि आई एम श्योर तुम्हें भी नहीं पता होगा कि वो जो है वो सारे सिल्वर हैं. तब वो बेटी थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि ऑफकोर्स उसको भी नहीं पता था. और वो चेक करने के लिए एक किचन ड्रॉयर में चले जाती है वो देखने के लिए. और फिर वो चेक करने जाती है. आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. At the corner of the road, I looked up at the nameplate. Marconi Street, it said. I had been at number 46. The address was correct. But now, I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served for them. You can see them again in strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery filled the narrow table drawer. I resolved to forget the address. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. So, अचानक से जो है वो जो narrator होती है वो अपने table से खड़े होती है, chair से खड़े होती है and वो कहती है कि अब मुझे जाना होगा, मैं भूल गई थी कि मेरी train है. तब जो वो बेटी होती है उसकी, मिसेस डॉर्लिंग की, वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरी मदर से मिलना नहीं है? तो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मिलना और मुझे अभी यहाँ से जाना होगा. और तब जो है जब वो जाती है तब उसको आवाज़ सुनाई देती है उसके घर से कि वो चम्मच या इस तरह की जो आवाज़ें होती है ना, तो वो जिंगलिंग ऑफ स्पूंस की उसको आवाज़ आती है. और फिर से वो स्ट्रीट के कॉर्नर में स्ट्रीट का नाम देखती है तो वो मार्कोनी स्ट्रीट, वो बोर्ड जो है वो मार्कोनी स्ट्रीट का लगा होता है और वो नंबर 46 में ही गई थी. तो वो कहती है कि एड्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब उसे उसकी वो पुरानी चीज़ें नहीं चाहिए थी. क्यों नहीं चाहिए थी? क्योंकि अब वो सारी चीज़ों का जो उसके उसका मतलब था, जो सेंटिमेंटल वैल्यूज थे, वो बदल चुके थे. क्योंकि वो जो चीज़ें आपकी खुद की होती हैं, अगर आप उन्हीं सारी चीज़ों को एक स्ट्रेंज जगह पे देखोगे तो वो सारी चीज़ें की जो वैल्यू होती है वो आपके लिए बदल जाती है. एंड अब तक उसने वो चीज़ें जो सोची थी कि वो अपने घर लेके आएगी, फिर उसको याद आता है कि वो अपने एक छोटे से घर में वो सारी चीज़ें कहाँ रखेगी, जहाँ पे वो घर इतना ज़्यादा उसका छोटा है कि वो जो पतला सा वो जो ड्रॉयर है वो उसके दो तीन चम्मच से ही भर जाता है. इसका क्या मतलब हुआ कि वो इतना सस्ती सी एक जगह पे अब वो रहती है कि अब उसको ये सारे जो उसके पुराने इतने महंगे चीज थी वो वहां पे शोभा नहीं देंगी। एंड फिर वो कहती है कि अब तक मैंने वो एड्रेस जो है वो अपने मेमोरी में रखा है, लेकिन अब जो है मैं वो चीज भूल जाऊंगी। एंड क्यों इतना इजी क्यों होगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो इतनी सारी उसके साथ इतनी बैड मेमोरीज हैं होलोकॉस्ट की, सर्वाइवर की, कि एक एड्रेस भूलना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है खत्म। ये आप एक अकाउंट समझ सकते हो कि एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर का अकाउंट था कि वो, ये एक स्टोरी है जो कि पोस्ट वॉर और प्री वॉर के सिचुएशंस को बयान करती है। एंड अब हम लोग इसके एक्सरसाइजेस को देखेंगे। इस चैप्टर के चार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, इफ यस व्हाट इट इज। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइन यूज होती है, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ये जो स्टेटमेंट है वो स्टोरी के बारे में आपको क्या बताता है, और अगर कुछ बताता है तो क्या बताता है। सो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, स्टेटमेंट की बात करें, तो ये हमें हिंट किस बात की देती है कि जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो नरेटर को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी बाकी लोगों की तरह अब तक मर चुकी होगी। और ये हमें किस बात का हिंट देती है कि ये एक पोस्ट वॉर सिचुएशन थी, जहाँ पे जो वॉर में जो लोग फंसे हुए थे वो लोग एक्सपेक्टेड थे मरे होने के लिए, और तभी जो है वो मिसेज डॉर्लिंग जो थी वो काफी आराम से थी कि अब उन्हें कोई भी वापस नहीं आएगा अपनी बिलोंगिंग्स लेने वहां से। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स, व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टोरी जो है वो वॉर से पहले और वॉर के बाद की कुछ कुछ टुकड़े बताती है, तो आपको क्या लगता है कि वो लड़की क्या क्या हार्डशिप से गुजरी होगी। सो ये नरेटर जो है, आप देख सकते हो कि उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, कि पहले जब वो आफ्टर लिबरेशन जब वो वहां से छुट्टी थी तब उसको इन सारी चीजों की याद आई भी थी, लेकिन वो डर रही थी उन चीजों के पास जाने से। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि वो ऐसी यादें उसके अंदर उजागर कर देगी जो कि अब उसे फिर अपने माँ बाप की याद आएगी, अपने भाई बहनों की याद आएगी, जो कि अब जिंदा है नहीं। एंड उस टाइम पे जब वो मिसेस डॉर्लिंग आया करती थी उसके घर से सामान ले जाने, तभी भी उसकी मदर ने उसको क्या बोल रखा था कि तुम्हें कुछ चीजें जानने की जरूरत नहीं है। तो तभी भी वो लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि उनकी हालत क्या होने वाली है, एंड आफ्टर वॉर वो उसके बाद वो सिचुएशन क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है वो पूरा एक्सपीरियंस नरेटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। सो वो एड्रेस क्यों भूलना चाहती थी जो नरेटर थी? तो वो नरेटर जो है वो इस वजह से एड्रेस को भूलना चाहती थी बिकॉज उसे वो पता चल गया था कि वो जो चीजें जो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, जो इम्पोर्टेंस होल्ड करती थी, जो मेमोरीज होल्ड करती थी, अब वो सारी चीजें बदल चुकी हैं। और अगर वो एड्रेस नहीं भूली तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी आए, उसके घर पे विजिट करे, और फिर जो है वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसको उसके घर से, मिसेस डॉर्लिंग के घर से अपनी ही चीजें वापस ले जाने की मतलब आवश्यकता महसूस हो, या फिर उसका दिल चाहे, और इस वजह से वो एड्रेस ही भूल जाना चाहती थी ताकि वो उसको उसकी यादों से तकलीफ ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 4, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रीडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। सो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये स्टोरी जो है वो एक अकाउंट है कि आफ्टर वॉर कैसे होता है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुतों में LRT में आप लोगों ने पढ़ा होगा एन फ्रैंक, द स्टोरी ऑफ एन फ्रैंक। तो वो एक डिटेल्ड अकाउंट है कि वो किस तरह से किस सिचुएशन में रह रहे थे, और ये जो है वो एक नाजी रजीम के खत्म होने के बाद आफ्टर वॉर किस तरह की चीजें होती हैं वो है। तो हम लोग इस स्टोरी से बहुत कुछ जान सकते हैं कि लोगों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है, लोगों के सेंटिमेंटल वैल्यूज किस तरह से कैसी चीज़ों से जुड़े रह जाते हैं जो जब वो उन चीज़ों के साथ जी रहे थे तब उन लोगों ने एक बार ध्यान भी नहीं दिया ठीक से, और अब वो उन्हीं सिल्वर स्पूंस और वो एंटीक डेकोरेटिव प्लेट से वो इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी कि वो कहीं ना कहीं जो फैमिली मेम्बर्स उसने खोए थे वो फैमिली मेम्बर्स को वो वापस वो उन्हीं चीज़ों से फील करना चाह रही थी। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जो है वो एक ग्रीडी वुमन थी और वो नहीं चाहती थी कि वो, ऑफकोर्स आपने जब देखा जब वो नरेटर अंदर गई तो उसका पूरा घर ही जो है वो नरेटर की चीज़ों से सजा हुआ था, तो अगर जो है वो नरेटर को वो सारी चीज़ें दे जाती तो उसके घर में शायद कुछ बचता नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि वो बचपन की बात उसको वो एड्रेस याद रह गया एंड अब जो है वो पर्पसली उस एड्रेस को भुला देना चाहती है, जो कि शायद कहीं ना कहीं काफ़ी डिफिकल्ट हो क्योंकि वो प्री वॉर सिचुएशन में वो एड्रेस बताया गया। सो यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइजेस भी ख़त्म हो जाती हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ये स्टोरी आप लोग खुद से एक बार पढ़ें और आप ये स्टोरी को जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर था नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर, सो उस चैप्टर से रिलेट करके आप इस स्टोरी को वापस पढ़िए, आप उस पर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि उस तरह के किस तरह के सिचुएशन होते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वॉर हुई हो, वॉर से पहले के क्या सिचुएशंस होते हैं और अब वॉर के बाद क्या सिचुएशंस बदल जाते हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।